नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ मौसम 2026 के लिए फॉस्फेट और पोटेशियम उर्वरक पर 41,534 करोड़ रुपए की पोषण आधारित सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस फैसले से किसानों को रियायती, किफायती और उचित कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि ये सब्सिडी पिछले खरीफ मौसम में दी गई सब्सिडी से 4,317 करोड़ रुपए अधिक है।
खरीफ सीजन के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम में 41,534 करोड़ रुपीस का सब्सिडी का पैकेज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड हो चाहे वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट हो, किसान भाइयों के लिए हमेशा एक तरीके से सेफ्टी शील्ड बन के खड़े हुए और किसी भी तरह के फर्टिलाइजर में अप्स एंड डाउन्स जो भी आए कभी उसका प्रभाव हमारे किसानों पे पड़ने नहीं दिया है।
सरकार ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण में पहलादपुर से टोडी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को भी स्वीकृति दे दी है। केरलम, असम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान कल सुबह 7 बजे से शुरू होगा और शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। दोनों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में एक ही चरण में मतदान होगा। वोटों की गिनती 4 मई को होगी। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति पर निर्वाचन आयोग से मुलाकात की। पार्टी ने आरोप लगाया कि राज्य में भय और अराजकता का माहौल बनाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में पश्चिम एशिया घटनाक्रम पर मंत्रियों के समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री सिंह ने बताया कि बैठक के दौरान पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के मद्देनजर उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम का स्वागत किया है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इससे पश्चिम एशिया में स्थायी शांति स्थापित होगी और हॉर्मुज जलडमरू मध्य से निर्बाध नौवहन और वैश्विक व्यापार जारी रहेगा। सरकार ने आज कहा कि देशभर की खदानों और बिजली संयंत्रों में कोयले का पर्याप्त भंडार है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देशभर में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
घरेलू एलपीजी की सप्लाई नॉर्मल है, सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पर्याप्त स्टॉक अवेलेबल है, कहीं कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। लगभग 95% बुकिंग ऑनलाइन हो रही है और लगभग 91% रिफिल की डिलीवरी डीएसी कोड के साथ हो रही है और ये 91% जो फिगर है वो ये इंश्योर करता है कि डाइवर्जन न हो।
विदेश मंत्रालय ने ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को अधिकारियों द्वारा सुझाए गए मार्गों का उपयोग करते हुए शीघ्र ही ईरान छोड़ने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि दूतावास से पूर्व परामर्श और समन्वय के बिना किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास जाने का प्रयास न करें, साथ ही उनसे आधिकारिक अपडेट पर नजर रखने का अनुरोध किया गया है। इस बीच अमरीका ने कहा है कि युद्ध विराम के अंतर्गत हॉर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर से शुरू होने वाला है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सैन्य हथियार की आपूर्ति करने वाले देशों पर 50% शुल्क लगाने की चेतावनी दी है। यह शुल्क तत्काल प्रभाव से लागू होगा। श्री ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान एक समझौते के अंतर्गत अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को रोकने पर सहमत हो गया है। युद्ध विराम की घोषणा के बाद आज घरेलू शेयर बाजार में जोरदार खरीदारी देखी गई। वहीं वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई और रुपया भी डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ। पीवी सिंधु, एचएस प्रणॉय, आयुष शेट्टी बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पीवी सिंधु ने मलेशिया की वोंग लिन चिंग को, एचएस प्रणॉय ने गुएन हाई डांग को और आयुष शेट्टी ने चीन की ली शी फेंग को हराया। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात की टीम ने दिल्ली को 211 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में दिल्ली की टीम ने ताजा समाचार मिलने तक 6 ओवर में बिना किसी नुकसान के 63 रन बना लिए हैं। किर्गिस्तान में सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के सचिन शेहरावत और प्रिंस ने ग्रीको रोमन वर्ग में 2 कांस्य पदक जीत लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।